बोलती कहानियाँ।
आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रविंद्र कालिया की कहानी 30 साल बाद, पूजा अनिल और अनुराग शर्मा की आवाजों में। इतनी सुबह कोई किसी से मिलता है क्या? उसने खिन्न होते हुए कहा। मुवक्किल होंगी, श्रीवास्तव दफ्तर में है, उससे मिलवा दो। वे तो आपसे ही मिलना चाहती हैं, शायद कहीं बाहर से आई हैं। अच्छा, ड्राइंग रूम में बैठाओ, अभी आता हूं। कपिल टॉयलेट में घुस गया। इत्मीनान से हाथ मुंह धोकर जब वो नीचे आया तो उसने देखा सोफे पर बैठी दोनों महिलाएं चाय पी रही थीं। एक 70 के आसपास होगी, दूसरी 50 के। एक का कोई बाल काला नहीं था और दूसरी का कोई बाल सफेद नहीं था, मगर दोनों चश्मा पहने थीं। कपिल को आश्चर्य हुआ, कोई भी महिला उसे देखकर अभिवादन के लिए खड़ी नहीं हुई। बुजुर्ग महिला ने अपने पर्स से कागज निकालकर कपिल के हाथ में थमा दिया।
ये खत आपने लिखा था?
उसने कड़े स्वर में पूछा। कपिल ने कागज ले लिया और चश्मा लगाकर पढ़ने लगा। भावुकता और शेरो शायरी से भरा एक बचकाना मजमून था। उस कागज को पढ़ते हुए सहसा कपिल के चेहरे पर खिसियाहट भरी मुस्कान फैल गई। बोला, ये आपको कहाँ मिल गया? बहुत पुराना खत है, 30 बरस पहले लिखा गया था।
पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या ये खत आपने लिखा था?
बुजुर्ग महिला ने उसी सख्त लहजे में पूछा। हैंडराइटिंग तो मेरी ही है, लगता है मैंने ही लिखा होगा।
अजीब आदमी है आप, कितना कैजुअली ले रहे हैं मेरी बात को।
बुजुर्ग महिला ने पत्र लगभग छीनते हुए कहा। दूसरी महिला अब तक निर्द्वंद बैठी थी, पत्थर की तरह। कपिल को यों अस्त व्यस्त देखकर मुस्कुराई। उसके सफेद संगमरमरी दांत पल भर में सारी कहानी कह गए। अरे सरोज, तुम? कपिल जैसे उछल पड़ा। इतने वर्ष कहाँ थीं? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं 30 साल बाद तुम अचानक मेरे यहां आ सकती हो। कहाँ गए बीच के साल?
तुम कहो कैसे हो, कैसे बीते इतने साल?
तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे साल नहीं दिन बीते हों। 30 साल एक उम्र होती है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमसे इस जिंदगी में कभी भेंट होगी।
क्या अगले जन्म में मिलने की बात सोच रहे थे?
यही समझ लो।
इस एक कागज के टुकड़े के कारण तुम मेरे बहुत करीब रहे हमेशा, मगर इसे गलत मत समझना।
इतने में कपिल की पत्नी भी नीचे उतर आई। वो जानती थी कि नाश्ते के बाद ही कपिल नीचे उतरता है, मुवक्किल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये मेरी पत्नी मंजुला है, देश के चोटी के कलाकारों में इनका नाम है, अब तक 20 रिकॉर्ड आ चुके हैं।
जानती हूँ, नमस्कार।
नमस्कार, मंजुला ने नमस्कार किया और एक्सक्यूज मी कहकर दोबारा सीढ़ियां चढ़ गई। उसने सोचा कोई नई मुवक्किल आई है। मंजुला की उदासीनता का कोई असर दोनों महिलाओं पर नहीं हुआ।
बच्चे कितने बड़े हो गए हैं?
उसी उम्र में है जिसमें मैंने ये खत लिखा था।
शादी हो गई या अभी खत ही लिख रहे हैं?
सरोज ने ठहाका लगाया। कपिल ने साथ दिया। बड़े की शादी हो चुकी है, दूसरे के लिए लड़की की तलाश है।
क्या करते हैं?
बुजुर्ग महिला ने पूछा। बड़ा बेटा जिलाधिकारी है बहराइच में, और छोटा मेरे साथ वकालत कर रहा है, मगर वो अभी कॉम्पिटिशन्स में बैठना चाहता है। सरोज की मांग में सिंदूर देखकर कपिल ने पूछा, तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं?
2 बेटियां हैं, एक डॉक्टर है, दूसरी डॉक्टरी पढ़ रही है।
किसी डॉक्टर से शादी हो गई थी? कपिल ने पूछा।
बड़े होशियार हो।
तुम भी कम होशियार नहीं थी, कपिल ने कहा। कपिल के दिमाग में वो दृश्य कौंध गया जब कक्षा की पिकनिक के दौरान नौका विहार करते हुए सरोज ने एक फिल्मी गीत गाया था, तुमसे आया न गया, हमसे बुलाया न गया। तुमने इनका परिचय नहीं दिया? कपिल ने बुजुर्ग महिला की ओर संकेत करते हुए कहा।
इन्हें नहीं जानते, ये मेरी माँ है।
कपिल ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया।
अब भी सिगरेट पीते हो?
पहले की तरह नहीं, कभी कभी। सरोज ने विदेशी सिगरेट का पैकेट और एक लाइटर उसे भेंट किया।
तुम्हारे लिए खरीदा था यह लाइटर कोई 10 साल पहले, इस बार भारत आई तो लेती आई।
क्या विदेश में रहती हो? कपिल ने लाइटर को उलट पुलट कर देखते हुए पूछा।
हाँ, मॉन्ट्रियल में। मेरे पति भी तुम्हारे ही पेशे में हैं।
कनाडा के लीडिंग लॉयर,
सरोज की मां ने जोड़ा। लगता है तुम्हारी जिंदगी में वकील ही लिखा था, कपिल के मुंह से अनायास निकल गया। सरोज ने अपने पति की तस्वीर दिखाई। एक खूबसूरत शख्स की तस्वीर थी। चेहरे से लगता था कि कोई वकील है या न्यायमूर्ति। कपिल भी कम सुदर्शन नहीं था, मगर उसे लगा वो उसके पति से 19 ही है। उसने फोटो लौटाते हुए कहा, तुम्हारे पति भी आए हैं?
नहीं, उन्हें फुर्सत ही कहाँ। बाल की खाल ना उतारने लगो, इसीलिए बताना जरूरी है कि मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पीली मैरिड।
तभी कपिल का पोता आंखें मलता हुआ नमूदार हुआ और सीधा उसकी गोद में आ बैठा। मेरा पोता है, आजकल बहू आई हुई है, कपिल ने बताया।
बहुत प्यारा बच्चा है, क्या नाम है?
बंटू। बंटू ने नाम बताकर अपना चेहरा छिपा लिया।
बंटू बेटे, हमारे पास आओ, चॉकलेट खाओगे?
खाएंगे, उसने कहा और चॉकलेट का पैकेट मिलते ही अपनी माँ को दिखाने दौड़ पड़ा।
कोर्ट कब जाते हो?
तुम इतने साल बाद मिली हो, आज नहीं जाऊंगा। आज तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा।
मैंने क्या गुनाह किया है?
सरोज ने कहा।
गुनाहों के देवता तो तुम पड़ा करते थे, तुम ही जानो। अच्छा यह बताओ, जब मेरी दीदी की शादी हो रही थी तो तुम दूर खड़े रो क्यों रहे थे?
कपिल सहसा इस हमले के लिए तैयार न था। वो अचकचाकर रह गया। अरे कहां से कुरेद लाई हो इतनी सूचनाएं, और वो भी इतने वर्षों बाद। तुम्हारी स्मृति की दाद देता हूं, 30 साल पहले की घटनाएं ऐसे बयान कर रही हो जैसे कल की ही बात हो।
यह याद करके तो आज भी गुदगुदी हो जाती है कि तुम रोते हुए कह रहे थे कि एक दिन सरोज की भी डोली उठ जाएगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। अच्छा यह बताओ कि तुम कहाँ थे जब मेरी डोली उठी थी?
कम ऑन सरोज, कपिल सिर्फ इतना कह पाया। मगर ये सच था कि सरोज की दीदी की शादी में वो जी भर कर रोया था।
ये बताओ बेटे कि सरोज को इतना ही चाहते थे तो कभी बताया क्यों नहीं उसे?
सरोज की माँ ने चुटकी ली। खत लिखा तो था, कपिल ने ठहाका लगाया, इसने जवाब ही नहीं दिया।
खत तो इसने उसी दिन मेरे हवाले कर दिया था,
सरोज की माँ ने बताया।
जब तक रिश्ता तय नहीं हुआ था, बीच बीच में मुझसे मांग मांग कर तुम्हारा खत पढ़ती थी।
मेरे लिए बहुत स्पेशल है यह खत, जिंदगी का पहला और आखिरी खत। शादी को इतने बरस हो गए, मेरे पति ने कभी पत्र तक नहीं लिखा, प्रेम पत्र क्यों लिखेंगे? वो मोबाइल कल्चर के आदमी हैं। हमारे घर में सभी ने पढ़ा है यह प्रेम पत्र, यहाँ तक कि मेरे पति मेरी बेटियों तक को सुना चुके हैं यह पत्र। मेरे पति ने कहा था कि इस बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर आना।
इसका मतलब है पिछले 30 बरस से तुम सपरिवार मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाती रही हो।
यह भाव होता तो मैं क्यों आती 30 बरस बाद तुमसे मिलने? अच्छा इन 30 बरसों में तुमने मुझे कितनी बार याद किया?
सच तो ये था कि पिछले 30 बरसों में कपिल को सरोज की याद आई ही नहीं थी। अपने पत्र का उत्तर ना पाकर कुछ दिन दारू के नशे में शायद मित्रों के संग गुनगुनाता रहा था। जब छोड़ दिया रिश्ता तेरी जुल्फे स्याह का, अब सैकड़ों बल खाया करे मेरी बला से, और देखते देखते इस प्रसंग के प्रति उदासीन हो गया था। तुम्हारा सामान कहाँ है? कपिल ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए पूछा।
बाहर टैक्सी में, सोचा था नहीं पहचानोगे तो इसी से चंडीगढ़ लौट जाएंगे।
आज दिल्ली में ही रुको, शाम को कमानी में मंजुला का कंसर्ट है, आज तुम लोगों के बहाने मैं भी सुन लूंगा। दोपहर को पिकनिक का कार्यक्रम रखते हैं, सूरजकुंड चलेंगे और बहू को भी घुमा लाएंगे, फिर मुझे तुम्हारी आवाज में वो भी तो सुनना है, तुमसे आया न गया, हमसे बुलाया न गया, याद है या भूल गई हो? सरोज मुस्कुराई।
कमबख्त, याददाश्त ही तो कमजोर नहीं है।
कपिल ने गोपाल से सरोज का सामान नीचे वाले बेडरूम में लगाने को कहा। बाहर कोयल कूक रही थी। क्या कोयल भी अपने साथ लाई हो?
कोयल तो तुम्हारे ही पेड़ की है।
यकीन मानो मैंने 30 साल बाद ये कूक सुनी है, कपिल शर्मिंदा होते हुए फलसफाना अंदाज में फुसफुसाया। यकीन नहीं होता कि मैं वही कपिल हूं जिससे तुम मिलने आई हो और मुद्दत से जानती हो। कुछ देर पहले तुमसे मिलकर लग रहा था वो कपिल कोई दूसरा था जिसने तुम्हें खत लिखा था।
टेक इट इजी मैन,
सरोज उठते हुए बोली।
ज्यादा फिलोसफी मत बगारो, यह बताओ टॉयलेट किधर है?
कोयल ने आसमान सिर पर उठा लिया था।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।